ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलय हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलय हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलय హంత ఓ అయం యహ అద్రి పర్వత అబలా హే సఖ్యో. హరిదాస వర్య భగవాన్ కే సేవకో మే సే సర్వశ్రేష్ఠ యత్ చూకి రామ కృష్ణ చరణ కృష్ణ తథా బలరామ కే చరణ కమలో కే స్పర్శ స్పర్శ సే ప్రమోద హర్షిత్ మానం ఆదర్ తనోతి ప్రదాన్ కర్తా హై సహ సాత్ గోగణయో గౌవే బచ్డే తథా గ్వాల బాల్ కే తయో ఉన్ దోనో శ్రీకృష్ణ తథా బలరామ కో యత్ క్యోంకి పానీయ పేయజల్ కే సాత్ సూయవస అత్యంత ములాయం ఘాస్ కందర గుఫాయే కంద మూలై తథా ఖాద్య కందో సే. అనువాద్ ఔర్ తాత్పర్య శిల ప్రభుపాద్ కే శిష్యో ద్వారా సమస్త భక్తో మే యహ గోవర్ధన్ పర్వత సర్వశ్రేష్ఠ హై. హే సఖియో, యహ పర్వత్ కృష్ణ తథా బలరామ కే సాథీ సాథ్ ఉన్కి గౌవో బచ్డో తథా గ్వాల్ బాలో కో సభీ ప్రకార కీ ఆవశ్యక్తాఓ, పీనే కా పానీ, అతి ములాయం ఘాస్, గుఫాయే, ఫల్ ఫూల్ తథా తరకారియో కీ పూర్తి కర్తా హై. ఇస్ తరహ యహ పర్వత్ భగవాన్ కా ఆదర్ కర్తా హై. కృష్ణ తథా బలరామ కే చరణ కమలో కా స్పర్శ పాకర్ గోవర్ధన్ పర్వత్ అత్యంత హర్షిత్ ప్రతీత్ హోతా హై. తాత్పర్య, ఉపర్యుక్త అనువాద్ శిల ప్రభుపాద్ కృత్య చైతన్య చరితామృత మధ్య లీలా సే ఉద్ధృత్ కియా గయా హై. శిల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ నే గోవర్ధన్ పర్వత్ కే ఐశ్వర్య కీ వివేచనా ఇస్ ప్రకార కీ హై. పానీయ గోవర్ధన్ పర్వత్ కే ఝర్నో సే ప్రాప్త సుగంధిత శీతల జల్ కా ద్యోతక హై, జిసే కృష్ణ తథా బలరామ పియా కర్తే థే ఔర్ జిస్సే అప్నే పాంవ్ ఔర్ ముఖ్ ధోయా కర్తే థే. గోవర్ధన్ పర్వత్ శహద్ ఆమ్ కా రస్ తథా పీలూ కా రస్ జైసే అన్య పేయ భీ ప్రదాన్ కర్తా హై. సూయవస దూర్వా అర్థా దూబ్ ఘాస్ కో బతలాతా హై, జిసే అర్ఘ్య కీ ధార్మిక భేంట్ దీ జాతీ హై. గోవర్ధన్ పర్వత్ మే ఘాస్ భీ హోతీ హై జో సుగంధిత్ ములాయం తథా గౌవో కీ వృద్ధి ఏవం ఉన్మే దూధ్ బఢానే కే లియే లాభప్రద్ హై. ఇస్ తరహ యహ ఘాస్ ఆధ్యాత్మిక పశువో కో ఖిలానే కామ్ ఆతీ హై. కందర్ గుఫాఓ కా సూచక హై, జహాం కృష్ణ బలరామ తథా ఉన్కే సంగీ ఖేల్తే బైఠతే ఔర్ లేటతే థే. యే గుఫాయే తబ్ ఆనంద్ దేతీ హై జబ్ యా తో బహుత్ గర్మీ హో యా సర్దీ హో యా ఫిర్ వర్షా హో రహీ హో. గోవర్ధన్ పర్వత్ మే ఖానే కే ములాయం కంద, శరీర్ సజానే కే రత్న, బైఠనే కే లియే సమతల్ స్థాన్ తథా చికనే పత్థర్, చమకీలే జల్ ఔర్ అన్య ప్రాకృతిక వస్తువో కే రూప్ మే దర్పణ తథా దీపక్ ప్రదాన్ కర్తా హై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాఖయ చక్షురోన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలి స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగొరుః శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగొరున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా. లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధుర్ జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ या उसे साइलेंट मोड पर कर दे। साथ ही साथ माताओं से निवेदन है कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन्हें बाहर लेकर बैठे ताकि कथा में बाधा ना हो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और इसके द्वारा गोवर्धन को पूजनीय बनाया और हमें ये सिखा रहे हैं कि भक्ति का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे हम भगवान के नजरों में पूजनीय या आदरणीय बने। तो रामायण से हम भरत के चरित्र के विषय में सुन रहे हैं। इस 21वीं शिक्षा पर जब भरत अब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे हैं और अयोध्या में आशंका जो उनको थी कि कुछ विपत्ति के संकेत दिख रहे थे उन्हें, इसलिए अब वो महाराज दशरथ को उनके कक्ष में न पाते हुए कैकेयी के कक्ष की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और उस दौरान उस रास्ते में भरत के मन में जो विचार चल रहे हैं उनका मिश्रण, अलग अलग विचारों का उतार चढ़ाव तो बताया गया है। और इस दौरान वो अपनी तैयारी कर रहे हैं मानसिक रूप से कि ऐसी कौन सी विपत्ति हो सकती है जिसके वजह से पूरी अयोध्या नगरी स्मशान भूमि बन चुकी है। न केवल पूरी अयोध्या नगरी बल्कि मेरे स्वयं के पिता, उनके यहां मौजूद होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। तो जो उनके मन की स्थिति है उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अपने मन की तैयारी की किस प्रकार से, स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो ये एक हमारे साधना भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण विचार है एक साधक के लिए, क्योंकि हमारी भी स्थिति कैसी है कि कितने जन्मों से राम को बहिष्कृत कर दिया है हमारे अंदर की कैकेयी ने, और हमारे अंदर भरत भी हैं जो अब व्याकुल हैं, दुविधा मन स्थिति में हैं कि बेटे तो हैं कैकेयी के परंतु भक्त अनन्य राम के हैं। तो एक कलंकित संबंध भी है उनका, परंतु उनके साथ साथ उनके जो भाव हैं वो अनन्य भाव है। और इस अधेड़ बूंद में जो भरत अपने आप को पाते हैं वो एक साधक की स्थिति है। तो कुछ उदाहरण से सबसे पहले ये सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जब कोई हवाई यात्रा करता है तो आपने अगर अनुभव किया है हवाई यात्रा की, एयरप्लेन ट्रैवल में जैसे ही सब लोग एक प्रकार के आनंद में होते हैं कि उड़ेंगे, हाँ, हवा में उड़ेंगे, बादलों के ऊपर जाएंगे और जहां पर भी पहुंचना है ऐसे पहुंच जाएंगे, यहां से दिल्ली 2 घंटे में, नहीं तो 1 दिन लग सकता है। तो वो एक प्रकार की खुशी रहती है, परंतु उसके साथ साथ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस सारे पैसेंजर्स को क्या दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपने स्ट्राइव तो कर लिया बेस्ट के लिए, एयर टिकट ले ली, आप बोर्डिंग भी कर लिए हैं, सब कुछ क्लियर है आपका, एयरप्लेन भी हमारा इंटैक्ट है, पायलट्स भी सब ट्रेंड हैं, लाइसेंस्ड हैं, परंतु सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यही दिए जाते हैं कि ये प्लेन यदि क्रैश हुआ, जो कि होते हैं क्रैश, तो क्या गायब भी हो जाते हैं कई बार, पता ही नहीं चलता है कि प्लेन के साथ पैसेंजर सब लोग हैं कहां। तो एयरप्लेन ट्रैवल का एक एग्जाम्पल है। फिर आप देखो कि लोग जैसे किचन में, विशेष रूप से हमारे किचन में हमने फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं। अब देखो, एक तरफ हम आग जला के रखते हैं वहां पे, अगर किचन में आग नहीं जलेगी तो किचन किस काम का है ना, बोलते हैं ना किचन में चूल्हा जलते रहना चाहिए। अब ये कौन सी आग, ये अलग बात है, जो भोजन पकाने वाली आग है वो जलती रहनी चाहिए। तो एक तरफ हम आग जला रहे हैं और दूसरी तरफ उस आग को बुझाने के लिए साधन रखे हैं, अर्थात आग जलाई है, स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट, परंतु वो आग जहां नहीं लगनी चाहिए यदि लग जाए तो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, क्या है ये, सब लोग अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस निकाल कर रखते हैं ना, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, ज्वेलरी की इंश्योरेंस, कितने इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। ये सारे इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि सबको पता है कि चाहे कितना भी मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं, बीमार तो एक दिन होने वाला हूं, चाहे मैं कितना भी अपने आप को जिलाऊं, ये जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, एक ना एक दिन खत्म होने वाला है ये जीवन। और फाइनली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, ये हमको डिफेंस में सिखाया गया था, एक सैनिक को, एक योद्धा को सिखाया जाता है कि वो जिंदगी भर जो ट्रेनिंग लेता है वो क्या ट्रेनिंग ले रहा है कि भाई जीतना है, युद्ध जीतना है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी बताया जाता है और ये भी उसे पता है कि शहीद भी हो सकते हैं और इतने होते हैं। तो हमने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लिया था महाभारत से कि भगवान श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को कैसे हमारे सामने प्रस्तुत किया, शांतिदूत बनकर गए परंतु उसके साथ साथ पीछे पांडवों को कहा युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। परंतु इसमें 2 एक्सट्रीम हैं, यदि कोई केवल अपने जीवन में बेस्ट 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 की अपेक्षा रखता है तो वो कौन से क्लब को ज्वाइन करता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। और यदि कोई केवल मायूसी का जीवन जी रहा है कि मेरे जीवन में बुरा से बुरा ही हुआ है और बुरा से बुरा ही होगा, इसके अलावा मेरा जीवन कुछ है ही नहीं, कोरा कागज ही रह गया, तो पेसिमिस्टिक फियर्स वो है। तो ये हमने कुछ लिस्ट इसके निकाले थे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के, इस पर हमने काफी चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके पश्चात पेसिमिस्टिक फियर्स कि जब हम साधना भक्ति में अपयश देखते हैं, हमारे हियरिंग चैंटिंग में, सेवा संग इत्यादि में, तो फिर ये सारे जो भय हैं, ये भय के वजह से हमारी जो साधना भक्ति की यात्रा है उसमें अवरोध हमको दिखते हैं। तो गोपियों ने रासलीला में ये सिद्धांत प्रस्थापित किया। जब भगवान ने बांसुरी बजाई शरद पूर्णिमा की रात, और गोपियों ने ये सोचते हुए वो अपने घर से निकली हैं कि ये रात ऐसी अनोखी रात होगी जहां पर हमारा मिलन हमारे श्याम सुंदर से होगा। जैसे कि हम लोग साधना भक्ति में हमारी अपेक्षा क्या है कि वो कोई एक तो दिन होगा किसी जन्म में जब हमारा भी आमना सामना हमारे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी श्याम सुंदर के साथ होगा। तो मध्य रात्रि में गोपियां जो निकली इस अपेक्षा में, उसके साथ साथ डर क्या था? डर यही था कि हमारे परिवार वाले, हमारे पति और बाकी सगे संबंधी, वो हमें परमानेंटली रिजेक्ट कर देंगे। जैसे ब्राह्मण पत्नियां जब सारा भोग लेकर कृष्ण बलराम को अर्पित करने गईं, तो उन्हें पता था, उन्हें उनके पतियों ने उनको रोका भी, परंतु वो मानी नहीं। और जब कृष्ण बलराम, भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अब तुम लोगों ने हमें संतुष्ट कर दिया है, अब लौट जाओ, तो उन्होंने कहा कि अब हमें स्वीकार कौन करेगा? तो भगवान ने आश्वासन दिया, परंतु वो किस तैयारी में आई थी? बस, और ऐसा नहीं था कि वो घर से अपना सब सामान अटैची पैक कर निकली थी कि अभी तो हमारे पति तो वापस हमको स्वीकार नहीं करने वाले, तो कम से कम जितना हो सके हमारा सामान लेकर निकले। केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भोग, बस वही लेकर गई थी कि बस आगे हे बांसुरी वाले, हमारी डोर तेरे हाथ, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो इसमें हमने ये एक विषय लिया था हमारे पिछले सिटिंग में कि एक तरफ है हमारी साधना, और उस साधना को पूरा करने के लिए जो साधन हमारे पास हैं या जो साधन हम इकट्ठा करते हैं, तो प्रश्न कई बार ये आता है कि दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? क्या साधन इकट्ठा करना साधना के लिए वो, या उसकी कोई परवाह न करना, केवल साधना पे गौर करना? तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न चिन्ह एक साधक के जीवन में आता है, साधन और साधना को लेकर, तो हमने इसके कुछ उदाहरण लिए थे। जैसे सुदामा, उनके पास क्या साधन थे, परंतु फिर भी बिना साधन कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जब प्रसन्न किया अपनी साधना से, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कितने साधन दिए बाद में, वो आलिशान महल और सब नौकर चाकर इत्यादि बहुत कुछ दिया। शबरी का उदाहरण, विदुरानी का उदाहरण, कुब्जा, गजेंद्र और हमारे श्रील प्रभुपाद। अब देखिए, इस संसार में अक्सर जब ये देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ उपलब्धि हासिल करी, तो हां, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद भौतिक रूप से बहुत सफल रहे, आध्यात्मिक रूप से तो थे ही, परंतु भौतिक रूप से भी, जैसे कई व्यापारी श्रील प्रभुपाद से पूछते थे कि आप किस प्रकार का व्यापार किए हैं कि 40 रुपए लेकर गए वो भी एज इट इज थे आपके और 40 करोड़ कर लिया आपने 13 साल में, तो व्यापार के दृष्टिकोण से देख रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद अगर व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, भौतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो फिनोमिनल सक्सेस था प्रभुपाद का। परंतु प्रभुपाद लीलामृत, उस पुस्तक का साइज आप देखो, हमारे इस्कॉन की सबसे, एक पुस्तक में सबसे मोटी पुस्तक वही है, बाकी भागवत तो अलग अलग वॉल्यूम्स में है, परंतु श्रील प्रभुपाद को डेडिकेटेड जो प्रभुपाद लीलामृत क्लासिक बुक हमारी सबसे मोटी किताब है, इतने पन्ने। क्या है उसमें कि कैसे प्रभुपाद ने बिना साधन के साध्य को साध लिया, यही तो प्रभुपाद का ग्लोरी, बिना साधन के। तो ये जो एक प्रिंसिपल है कि बिना साधन के जब कोई सफल बनता है, जैसे स्टोरीज कई बार व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियोज आते हैं ना कि रैग्स टू रिचेस, कि जो अभी इतना ऐश्वर्यशाली है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मैट्रिक में फेल हुआ था, मुझे बताया गया, वो अमिताभ बच्चन रिजेक्ट हो गए थे पहले, बाद में इतने सफल हुए, ऐसे कितने सारे उदाहरण आते हैं कि जो रिजेक्ट हो गए थे, रैग्स टू रिचेस की स्टोरी। जैसे हमारी गीता कोर्स में मैं एक एग्जाम्पल दिया करता था, एक हमिंग बर्ड नाम का पक्षी है और ये पक्षी इतना चुस्त पक्षी है ये, कि ये जो पंख फड़फड़ाता है 5 सेकेंड में 75 बार इसके विंग फ्लैप्स करते हैं, विंग फ्लैपिंग 5 सेकेंड में 75 बार, और एक बार जब ये उड़ान अपनी भरता है ये पक्षी, तो 1500 माइल नॉनस्टॉप उड़ सकता है, 1500 माइल नॉनस्टॉप। तो हमको लग रहा होगा कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, बड़ी बात तो है फिर भी, लेकिन अभी जो आखिरी गुण इसका सुनोगे आप, तब समझ में आएगा कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, कम से कम साधन में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि, इसका वेट 3 ग्राम्स है, 3 ग्राम का पक्षी है ये, तो सोचो कि फ्यूल कितना कम ये यूटिलाइज करता है, लेकिन आउटपुट कितना है, इनपुट कितना कम है, आउटपुट कितना है। तो साधना भक्ति में ये जो प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, जैसे मुझे याद है हमारे दिल्ली के यूनिट में एक बंदा था, आपने वो सरकारी कुर्सियां देखी होंगी, वो प्लास्टिक के रिबन को लोग पिरो के बनाते हैं, तो सब सरकारी दफ्तरों में वो कुर्सियां, तो एक बंदा वो वहां पर दिन रात सुबह से लेके उसकी जो 8 घंटे की ड्यूटी वही थी कि वो कुर्सियां बनाता था। तो जब हम वो कुर्सियां इस्तेमाल करते थे तो हमको कुछ इसमें ऐसी कलाकारी नहीं दिखती है, तो बहुत से बड़े बड़े कलाकार ऐसी कलाकारी नहीं दिखती थी। परंतु जब भी नई कुर्सी आती थी तो मैं जब देखता था कि एकदम सिमेट्री में उसके जो स्क्वायर्स या सर्कल्स बने हुए हैं, कलाकारी है उसके अंदर। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये बनाता कौन है हमारी यूनिट में, तो जैसे बोलते हैं ना वाओ, वो पैदाइशी अंधा व्यक्ति, उसने कभी सूरज की एक किरण नहीं देखी, अंधा व्यक्ति। तो मैं जाके देखा कि वो सही में कैसे बनाता है ये। हम जो दृष्टि वाले हैं, हमको भी जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, कोई उसको बचपन से ऐसे नहीं बना पाएगा। तो जब पता चला कि देखो इसके साधन कितने कम हैं, परंतु आउटपुट कितना दे रहा है। बहुत साल पहले एक वृंदावन यात्रा में राधानाथ महाराज हमको एक नई जगह पर लेकर गए, सूर्यकुंड। पहली दफा सब लोग सूर्यकुंड गए थे, तो बहुत स्पेशल जगह है सूर्यकुंड, एक छोटा सा गांव है वहां पर। तो हमने सोचा, कुछ ब्रह्मचारी हमने सोचा कि हमने वृंदावन में साधु मधुकरी करते हैं बहुत सुना है, चलो थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं कि ये मधुकरी, क्योंकि इस्कॉन के जो साधु हैं रॉयल मधुकरी होती है उनकी, परंतु एक्चुअल जो ऐसे धामों में साधु जो हैं मधुकरी कैसे करते हैं कि कोई पता नहीं कि कौन से घर में क्या मिलेगा। हम लोग तो पहले होस्ट पूछ लेते, प्रभु जी मेनू बताइए, तो एक हफ्ते पहले मेनू देते थे। तो हमने सोचा कि जो एक्चुअल ओरिजिनल मधुकरी है वो करते हैं। तो मैं गया एक घर में, दोपहर के 2:30-3 बजे थे। तो मैं गया तो एक झोपड़ा सा था वो बस। तो मैं इसलिए वो घर चुना कि वो घर भी ऐसा होना चाहिए कि जहां पर एक्चुअली लगे कि हर चीज अनसर्टन है। तो झोपड़ा सा था, तो जो महिला जैसे ही मुझे द्वार पर देखा, तो जैसे कि वहां की प्रथा है वृंदावन धाम की, तो उन्होंने एक साधु समझकर मुझे अंदर बुलाया। तो सबसे पहले तो वो इम्प्रेसिव लगा कि अंदर बुलाया है, अनजान हो, क्या पता कि साधु है कि नहीं, केवल कपड़े धारण किए वो होगा, परंतु इनवाइट किया। और वो समझ गई ये 2:30-3 बजे ये साधु के वेश में जो व्यक्ति आया है तो ये मधुकरी के लिए आया। तो उन्होंने बिठाया मुझे और वहां पर ही बस, और कुछ कमरे उमरे नहीं थे, बस वहां पर जो झोपड़े का एक खुला हुआ भाग, वहां पर चूल्हा था, और चूल्हे को देखकर समझ गया था कि इन परिवार का भोजन हो चुका है, परंतु चूल्हा थोड़ा सा जला हुआ था। तो ये माताजी ने 10 मिनट में एक फुल मील, फुल होलसम मील बनाया 10 मिनट में, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। वो चूल्हा तो जला हुआ था, उसके अंदर उसने बैंगन 2 डाले थे बड़े वाले, और वो बैंगन भूंज रहे थे। उसको भूंजने में कुछ 5-7 मिनट लगा, तब तक आटा गूंदा, ऊपर तवा, आटा गूंदा, और वो ब्रज रोटी, मोटी वाली ब्रज रोटी बनाई वो तवे के ऊपर। तब तक ये बैंगन पूरा भूंज गया था, उसका छिलका निकाला, उसको अपने हाथों से मसल के उसमें नमक मिर्च मसाले डालकर तब तक रोटी पक गई। कोई थाली नहीं, कुछ नहीं, रोटी के ऊपर वो जो बैंगन का उन्होंने बनाया था भरता जैसा, और उसके साथ मट्ठा 10 मिनट में। कम से कम साधन, कई बार हमने देखा है बहुत सोफिस्टिकेटेड किचन होते हैं जिसके अंदर सारे उपकरण होते हैं, सारे ब्लेंडर, मिक्सी, माइक्रोवेव ओवन और कुकिंग रेंज और मसाले डब्बे वब्बे सब भरे हुए हैं, सब एज इट इज रहते हैं। वेस्ट में मैंने देखा कि वहां पे किचन ऐसे आलीशान दिखते हैं किचन, तो और सब अप्लायंसेस, सारे जो लेटेस्ट अप्लायंसेस हैं वो किचन के अंदर होते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये किचन यूज कितना होता है। कैसे समझ में आया? अब जैसा किचन का ओटा होता है उसको देख के समझ में आता है ना कि किचन यूज कितना होता है। तो जो किचन का ओटा उसको साफ करने के लिए वो लोग टिश्यू पेपर रखे हुए थे। टिश्यू पेपर पता है ना, जो हम लोग कई बार प्लेट के साथ थोड़ा सा दे देते हैं, तो टिश्यू पेपर से अगर किचन का ओटा उनका साफ हो रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि किचन कितना यूज होता है। तो ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, ये मधुकरी का जो मेरा अनुभव, कि कम से कम साधन में इस माताजी ने एक फुल मील भरपेट जिसको मिल सके वो दे दिया। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक कॉन्सेप्ट है साधक के लिए, ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप साधन का इस्तेमाल साधना के लिए करो और उसका बैलेंस बनाकर रखो। अक्सर होता क्या है कि हम साधना करते हैं साधन को इकट्ठा करने के लिए, बल्कि साधन होने चाहिए हमारी साधना को बढ़ाने के लिए। तो आज एक स्पेशल उदाहरण मैं लेना चाहूंगा श्रीमद् भागवत के और महाभारत से, भीष्म पितामह का। अब देखिए ये जो प्रसंग है भीष्म पितामह बाणों की शैया पर, इस दृश्य को कल्पना कीजिए आप कि भीष्म पितामह, ये दसवां दिन है महाभारत के युद्ध का, दसवां दिन जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटाए गए, और किसने लिटाया? अर्जुन ने, जो कि भीष्म पितामह के सबसे प्रिय पोते अर्जुन। तो यहां पर आप देखो कि जो जो लोग मौजूद हैं यहां पर इस चित्र में, एक तो भगवान कृष्ण जो मारने के लिए उठे थे भीष्म पितामह को, रथ का पहिया उठाया, क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह अर्जुन को मार रहे थे और प्रण ले लिया था कि आज मैं अर्जुन को मार कर रहूंगा। तो सोचो ये सीन से पहले नाइन्थ डे क्या हुआ था, कि अभी जो प्रेम से बैठकर एक दूसरे को इतना आदर दे रहे हैं, एक दिन पहले एक दूसरे को मारने पर उतारू थे और प्रण ले लिया, भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया, अर्जुन ने फिर प्रण लिया भगवान को रोकते हुए कि आप मत आपका प्रण तोड़ो, मैं मारूंगा इनको। तो सोचो ये तीन कैरेक्टर्स, भीष्म पितामह, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, क्या मेंटल टर्मोइल चल रहा था नाइन्थ डे पर, और हैं कौन भीष्म पितामह? भगवान के अनन्य भक्त अर्जुन, वो भी भीष्म पितामह महाजन। और अभी यहां पर आमना सामना जब हो रहा है तो यहां पर भीष्म पितामह वो धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को, भगवान धन्यवाद दे रहे हैं भीष्म पितामह को। मैच्योरिटी देखो इनकी, कई बार हम लोग जब भक्तों के साथ संग में कुछ अनबन हो जाती है तो हमारी अनबन उस समय पता चलता है कि हमारी मैच्योरिटी लेवल कितनी है। यहां पे मैच्योरिटी लेवल देखो कि जान लेने पे उतारू सभी। और अभी सीन क्या है कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को ले गए हैं कि यदि युधिष्ठिर तुम्हें कोई सांत्वना दे सकते हैं तो वो केवल भीष्म है। और भीष्म एक दृष्टिकोण से तो भगवान भीष्म के हत्यारे हुए ना, दोनों अर्जुन भी और भगवान भी हत्यारे हुए। तो कल्पना करो हम यदि अपने आप को भीष्म पितामह के जगह पर रखें कि हमारे हत्यारे, अरे हमको जो कोई उल्टा सीधा बोल देता है हम उससे कोसों दूर रहते हैं, परंतु कल्पना करो कि हमको कोई मारने के लिए हमारा हत्यारा, और वो भी हमारे अंतिम क्षण में हमारे सामने आके बैठ गया, हमारा हत्यारा। तो इस फोटो को उस दृष्टिकोण से देखो आप। परंतु भीष्म पितामह स्तुतियों में कह रहे हैं कि ये मेरे पूरे जीवन भर के ब्रह्मचर्य और साधना भक्ति का फल मुझे मिल रहा है। अगर इस भाषा में हम कहें तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरा हत्यारा मेरे सामने, उनके सामने में मेरा शरीर त्यागूंगा। ये उनके लिए उनका परफेक्शन, भीष्म पितामह का टू डाई इन फ्रंट ऑफ हिज ओन किलर, ये उनका परफेक्शन है। तो यहां पर क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी के उपलक्ष में हमको किस कॉन्शियसनेस में जन्माष्टमी को मनाना चाहिए? देखिए ये संसार जो है हमें किस दृष्टिकोण से देखता है, आउटसाइड इन। जो हमारा एक्सटर्नल्स है, बाह्य क्या है हमारा, उस पर हमको जज करता है कि हाँ भाई ये इंजीनियर है, ये MBA है, ये पढ़ा लिखा है, ये पैसे वाला है, ये सुंदर है, ये ऐश्वर्यशाली है। एक्सटर्नली द वर्ल्ड लुक्स आउटसाइड इन, कृष्णा लुक्स इनसाइड आउट। क्यों क्यों भगवान, क्योंकि बाह्य दृष्टिकोण से भीष्म पितामह तो शत्रु पक्ष से लड़ रहे थे, तो बाह्य दृष्टिकोण से क्या दिख रहा है कि शत्रु हुए ना, वो तो अर्जुन के, पांडवों के, भगवान के शत्रु हुए। और उकसाया भीष्म पितामह ने भगवान को, उकसाया उठाओ अपना प्रण छोड़ो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन जीतता है, मैं देखना चाहता हूं ये भक्तवत्सलता, भक्त रक्षिता आपकी जो है वो किस हद तक है। उकसाया। परंतु भगवान क्या देख रहे हैं, इनसाइड आउट। वही देखते हैं भगवान कि हाँ हमारा पंडाल बहुत बड़ा होगा, लोग आके देखेंगे पंडाल इतना बड़ा है, स्टॉल इतने लगे हुए हैं, दर्शन इतने अच्छे हैं। तो ये सब जो बाहर की पब्लिक आएगी उनको सब दिखेगा, और जिनका जन्मदिन है वो क्या देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि पंडाल कितना बड़ा है, वो ये नहीं देखेंगे कि जन्माष्टमी का कलेक्शन कितना किया इन लोगों ने, वो क्या देखेंगे, ये सारे जो सेवक हैं इनके अंदर का जो कारखाना है वो कितना बराबर सही चल रहा है। इनसाइड आउट। क्योंकि ये सब पंडाल वंडाल से क्या हम उनको इंप्रेस कर रहे हैं, ये 2-3 लाख के पंडाल से क्या मदन गोपाल जी इंप्रेस होंगे? मतलब एक्सटर्नली कौन सी चीज उनको इंप्रेस कर सकेगी, कोई है जो इनके पास नहीं है? यदि कोई प्रवक्ता है बोले मैं जन्माष्टमी का ऐसा लेक्चर दूंगा कि यादगार रहेगा, अरे जो ओरिजिनल लेक्चरर हैं उनके सामने कौन से प्रवक्ता इस संसार के टिक पाएंगे? कोई बोलेगा मैं कीर्तन करूंगा, पूरे दिन भर जन्माष्टमी का कीर्तन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें भी बीट कर दिए हमको, 72 घंटे नॉनस्टॉप कीर्तन, वो भी डांसिंग के साथ, वो भी डांसिंग के साथ। तो हम लोग क्या भगवान को किस चीज से इंप्रेस करेंगे कि चलो मेरा जन्माष्टमी का ये डोनेशन, भगवान खुश होंगे, इंप्रेस होंगे? अरे जो सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं वो क्या हमारे रसीद बुक के डोनेशन से इंप्रेस होने वाले हैं? मतलब कुछ उदाहरण अगर आपको दूं कि जैसे मान लो कि अगर भगवान तो बहुत दूर की बात है, मान लो मिस्टर अंबानी, कोई मिस्टर अंबानी को इनवाइट कर रहा है कि मिस्टर मुकेश अंबानी आप आइए, मैंने 2 BHK खरीदा नासिक में, आपको दिखाना है मुझे। क्या दिखाना है? 2 BHK फ्लैट दिखाना है, आइए। तो मतलब ठीक है, अगर वो कुछ रिश्ता रखते हैं तो आ जाएंगे, लेकिन क्या वो इंप्रेस होंगे 2 BHK फ्लैट देख के? वाह क्या फ्लैट लिया है। तो हमारी भी स्थिति वैसी है, वो है वहां पे ओरिजिनल अंबानी के भी बाप, और हमारा जो एक्सटर्नल्स है ना वो 2 BHK जैसा है, कईयों का 2 BHK होगा, कईयों का 3 BHK होगा, विद जो भी वो पेंट हाउस के साथ, कईयों का 1 HK होगा, कईयों का झोपड़ी होगी, जो भी होगी। या फिर एक और उदाहरण कि कोई हरिदास ठाकुर, कौन? नामाचार्य हरिदास ठाकुर को इंप्रेस करने के लिए कह रहे मैंने 16 माला की आज। उनका स्टैंडर्ड क्या है डेली का? 192 राउंड्स। तो उनके सामने हमारा लड़खड़ाता 16 माला, क्या वो इंप्रेस होंगे उससे? या फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी वो हर दूसरे तीसरे दिन थोड़ी सी छांछ पीते थे, वो भी कुछ ड्रॉप्स ऐसे थोड़े से द्रोण में लिए हुए, ऐसे नहीं कि वो मटका भर भर के छांछ पीते थे, उसके अंदर ना वो अदरक मिर्ची और उसका तड़का, कड़ी पत्ते का तड़का डाल के, वो ऐसी छांछ नहीं, इतनी सी छांछ पीते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो ऑस्टेरिटी का स्टैंडर्ड है, अगर उनके सामने कोई मैं आज निर्जल कर रहा हूं गोस्वामी जी, मैं आज निर्जल कर रहा हूं, तो क्या उसमें इंप्रेस होने वाले हो? या कोई कुकिंग कर रहा है तो मदन गोपाल जी को आज मैंने देसी गाय के घी के लड्डू बनाए, अब उनको राधा रानी खिलाती हैं और वृंदावन की गाय, गोलोक वृंदावन की गाय, उसका घी और उसके लड्डू, तो जो हमारे लड्डू होंगे या जो भी कुछ हम करेंगे एक्सटर्नली, उसके अंदर क्या दम है? जैसे मैं जब बंबई में एक बैंड्रा में प्रोग्राम करता था, तो एक बार एक फैमिली ने मुझे बोला कि प्रभु जी हम स्पेशल भोग जगन्नाथ जी को ऑफर कर रहे हैं, जगन्नाथ जी हम लेकर आए पुरी से, तो आप आएंगे? मैंने कहा मतलब प्रोग्राम क्या है? कहा कि नहीं नहीं हम वो पूरा जगन्नाथ जी के सामने सारे भोग ऐसे जैसे आप लोग सजाते हो इस्कॉन के अंदर ऐसे सजा के फिर सब डिवोटीज को बुलाना चाहते हैं, जो भी कीर्तन लेक्चर। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया रिलेटिवली नई फैमिली थी ये, मैंने देखा बड़ा दो तीन टेबल रखे हुए हैं लिविंग रूम, बड़ा लिविंग रूम उनका, और 108 ऑफरिंग्स घर के अंदर, जगन्नाथ जी को 108 ऑफरिंग्स। तो मैं इंप्रेस हो गया, मैंने कहा कि ये सारे ऑफरिंग्स आपने एक दिन में बनाए? बोले नहीं नहीं ये तो सब घसीटाराम हलवाई से लाया है, सब एग्जॉटिक मिठाइयाँ, फिर वो फरसान आइटम ये वो। तो मैंने कहा आपने कुछ बनाया? नहीं नहीं हम थोड़ी को आता है बनाने को। तो मैंने देखा कि बांद्रा में पाली हिल में रहने वाले, पाली हिल जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो एक्सटर्नली दिख रहा है 108 ऑफरिंग्स हैं, लेकिन फाइनली पता चला है कहां से, वो सब मार्केट से लाए हुए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसके एक हफ्ते बाद हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के एक डिवोटी जो कि लालबाग में रहते, उन्होंने अपने घर पर मुझे बुलाया, और वो एक चौल में रहते हैं, और मुझे अभी भी याद है एक कमरा बस, एक कमरा, उसके उस कमरे के एक सेक्शन में वो बर्तन घिसने का जो भी, एक सेक्शन में कुकिंग, और एक सेक्शन में वो लोग जो भी सोने के लिए, और बाकी सारे सामान उनके घर के सब कुछ। और वो कमरा भी कितना बड़ा, मेरे ख्याल से कितना है आप, 10x10 का कमरा। क्या नाम है उनका? श्रीखर प्रभु। लेकिन जगन्नाथ जी का जो साइज डीटीज के, मतलब वो 10x10 में जगन्नाथ जी इतने बड़े, यहां से जगन्नाथ जी इतने बड़े, उनके वो रथ यात्रा भी होती है, और स्टैंडर्ड वहां पर उतने से के अंदर उन्होंने स्टैंडर्ड, इतने हाई स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे कि उन्होंने 56 भोग के लिए बुलाया था, और वो भी एकादशी के दिन, 56 ऑफरिंग्स एकादशी के दिन, और वो सारे 56 उन्होंने घर पे बनाए थे। और वो जो उनका क्लीनिंग एरिया है उसमें जगन्नाथ जी के लिए सारे क्लीनिंग अलग होता है, उनका अलग होता है, और जब भी उनका वो 56 भोग होता है पूरा चौल वहां का, सब लोग लाइन लगती है, सबको लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कम से कम साधन में ज्यादा से ज्यादा साधना। तो अब भीष्म पितामह का ये जो उदाहरण है, अब इसमें आपको हम 9th day पर ले चलते हैं। तो ये जो फेमस पास टाइम हुआ 9वें दिन, तो 9वें दिन भीष्म पितामह, देखो ये बहुत सुंदर बताया गया है कि तब तक भीष्म पितामह वो दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, दुर्योधन के पक्ष में थे, दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे, परंतु ये 9th day वो भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़े। कैसे? कि उन्होंने ये प्रण लिया कि आज मैं अर्जुन के साथ ऐसा युद्ध लड़ूंगा, अर्जुन को मारने के लिए नहीं, परंतु मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो सारथी बने हैं अर्जुन के, ये अर्जुन की कैसी रक्षा कितनी करेंगे। और क्योंकि भीष्म पितामह वीर रस में, तो वीर रस में होने के कारण उनको भगवान श्री कृष्ण का वो रौद्र रूप देखना था। जैसे हम लोग श्याम सुंदर कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज भी मुस्कुरा रहे हैं वो, कल भी मुस्कुरा रहे थे, मैं कल आऊंगा तभी भी वो मुस्कुराएंगे। परंतु वो श्याम सुंदर यदि हमारे लिए रौद्र रूप धारण कर लें तो वो हम कितना झेल पाएंगे। तो भीष्म पितामह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहले भी मुस्कुराते हुए बहुत उनके आदान प्रदान हुए, परंतु अपनी स्तुतियों में भीष्म पितामह वो किसकी सबसे ज्यादा वो सराहना करते हैं, गुणगान करते हैं कि ये जो रूप मैंने आपका देखा, कैसा रूप था वो? अच्छा, इससे पहले जब भीष्म पितामह वो घमासान युद्ध प्रारंभ किया अर्जुन के साथ, तो अर्जुन भीष्म पितामह को अब अपने सामने पहली दफा देख रहे हैं, वो भीष्म पितामह के साथ 1-to-1 युद्ध चालू हुआ है। तो अर्जुन तो अपने बचपन में चले गए, वो तो क्या देख रहे हैं कि इनके साथ, अर्जुन सोचने लगे कि बचपन में जब मैं खेल कर आता था तो मैं भीष्म पितामह के गोद में उनकी दाढ़ी से खेलते हुए उनको पुकारता था, तात श्री। अर्थात दादाजी में उनको पुकारता था, तब वो मुझको मुस्कुरा के बोलते थे अर्जुन, मैं पिता बुलाता था, सॉरी, तो वो बोलते थे कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूं। तो अर्जुन क्यों भीष्म पितामह को पिता बुलाते थे? क्योंकि पिता से ज्यादा स्नेह अर्जुन को भीष्म से मिला था, इसलिए वो उनको पिता बुलाते थे। तो अब सामने भीष्म पितामह एक के बाद एक बाण छोड़ रहे हैं और अर्जुन वो अपना बचपन याद कर रहे हैं। तो अर्जुन सोचिए कि इस विचार में अपने पितामह को ऐसे प्रेम से याद करते हुए क्या अर्जुन युद्ध कर सकते थे? नहीं। और महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने अर्जुन को तो घायल करना शुरू किया, उसके साथ साथ भगवान को भी घायल करने लगे, हो कई बाण भगवान को भी लगे। और जब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह अपने पूरे ताव में, पूरी तीव्रता में वो अर्जुन को घायल कर रहे हैं, तब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने लगाम छोड़ी रथ की और अर्जुन को समझ में नहीं आया कि भगवान गायब कहां हुए। भगवान ने, जैसे कि सारथी की ड्यूटी होती है कि यदि वो जब रथ से उतरता है तो रथी को बोलकर आगाह कर उतरे। अर्जुन तो अपने पितामह के ध्यान में थे, बचपन के प्रसंगों को याद कर रहे थे, यहां पर भगवान रथ से उतर गए और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था और भगवान को केवल एक ही व्यक्ति दिख रहा था सामने, भीष्म पितामह। और ऐसे क्रोध भरे चेहरे से कुछ सूझ नहीं रहा तो भगवान ने एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाया, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान ने सुदर्शन को आह्वान क्यों नहीं दिया? जो फेमस भगवान का सुदर्शन चक्र है, जिससे भगवान असुरों का वध करते हैं, जब भी भगवान को किसी का वध करना होता है तो सुदर्शन को बुलाते हैं ना। तो ये इतना बड़ा चक्र, यहां पर भगवान को एक और नया नाम मिला, रथांग पाणि, रथ के अंग को जिन्होंने अपने हाथ में धारण किया उनको ये नया नाम मिला, रथांग पाणि। तो क्यों सुदर्शन को आह्वान नहीं किया उन्होंने? क्योंकि भगवान इतने क्रोध में और इतने व्याकुल हो गए थे अर्जुन को बचाने के लिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भूल गए कि सुदर्शन भी उनका एक अस्त्र है, भूल गए भगवान, इतने व्याकुल थे अर्जुन की सुरक्षा करने के लिए और भीष्म पितामह को खत्म करने के लिए। यह है वो दृश्य। और उस रथ के चक्के को, पहिए को अपने हाथ में लिए हुए भीष्म पितामह की ओर दौड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और गौर करने लायक बात है कि भगवान दौड़ने लगे, उस चक्के को फेंका नहीं उन्होंने, उसको लेके दौड़ रहे हैं। अच्छा, जब दो धनुर्धर युद्ध करते हैं और वो भी भीष्म और अर्जुन, तो डिस्टेंस बहुत होता है, तब जाकर जो स्पीड है बाणों की वो समझ में आती है। तो बहुत डिस्टेंस था अर्जुन के रथ में और भीष्म पितामह के रथ में, डिस्टेंस बहुत था। तो सोचो, उस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए भगवान इस रथ के पहियों को लेकर दौड़ने लगे। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि फेंक भी सकते थे ना वहां से, क्या भगवान के अंदर उतनी शक्ति नहीं है? तो भगवान ने उसी व्याकुलता में सोचा कि कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए मैं भीष्म के एकदम पास जाकर मारूंगा उसे। जैसे अगर कोई बंदूक उस निशाना ठीक नहीं है उसका दूर से, तो पास जा जाके करता ना। तो भगवान देखो इतने अस्त व्यस्त हो गए, डिसओरिएंटेड। परंतु ये डिसओरिएंटेशन क्या था? हम लोग कौन से मुद्दे पर हैं, साधना और साधन, कि भगवान की साधना क्या है? अभी तक तो हम हमारी साधना की बात कर रहे हैं। भगवान की साधना क्या है? भक्त वत्सलता। तो भगवान ने देखा जो भी साधन मिल जाए मुझे, कौन सा साधन? टूटे हुए किसी के रथ का पहिया, चाहे वो साधन मिल जाए, मुझे मेरी साधना पूरी करनी है। और कौन सी साधना है? अर्जुन की रक्षा, वो उनकी साधना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को भी बुलाना भूल गए और यहां से फेंक सकते थे। जैसे कि जब शिशुपाल को उन्होंने मारा तो वहीं से छोड़ा सुदर्शन चक्र, वो एकदम शिशुपाल के पास नहीं गए कि अच्छी से कट जाए उसका गला, वहीं से, एम बहुत अच्छा था उन्हें। लेकिन यहां पर दौड़े जा रहे। और अर्जुन ने जब देखा कि भगवान यकायक गायब हो गए, तो अर्जुन कूदे और अर्जुन भगवान के पीछे भाग रहे हैं। भगवान को अर्जुन क्यों रोक रहे हैं? देखो यहां पर इमोशंस का आदान प्रदान देखो आप, बहुत ही इमोशनल पिक्चर है ये। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हीरोइक पिक्चर है, परंतु ये हीरोइक नहीं, बहुत इमोशनल पिक्चर है। भीष्म पितामह ने भगवान के इमोशंस को जगाया अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उनके इमोशन क्या है? वीर रस में देखना है। तो यहां पर क्या भगवान की छवि देख रहे हैं भीष्म पितामह, जो घोड़ों के खुर से जो धूली उड़ी हुई है वो भगवान के चेहरे पर है, और भीष्म पितामह के बाणों से भगवान जो थोड़े घायल हुए हैं रक्त बह रहा है। तो धूल है चेहरे पर रणभूमि की, रक्त बह रहा है और भगवान पसीना पसीना। अब सोचो, जनरली कोई किसी को सुंदर रूप में कब देखना चाहेगा? कि नहाया धोया है, पाउडर लगाया है, क्रीम लगाया है, बाल संवारे हुए। परंतु भीष्म पितामह भगवान को कैसी सुंदरता देखना चाहते थे? अच्छी से ड्रेसिंग की हुई नहीं, धूल, रणभूमि की धूल लगी हुई है, पसीना गिर रहा है, खून की बूंदें, ये एक्स्टैटिक दर्शन था भीष्म पितामह के लिए। तो सोचो, कि वो क्षत्रिय को उनका वीर रस कितना स्ट्रांग पावरफुल था कि वो भीष्म पितामह, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भीष्म पितामह अगर हमारे जन्माष्टमी के ड्रेसिंग को देखते, अच्छी से सब लोग सब कुछ इतना इलेबरेट ड्रेसिंग किया, तो उनको इतना एक्सट्रेस ही नहीं आता था। बोले अरे थोड़ा धूल लगाओ रणभूमि की, थोड़ा पसीना लाओ मदन गोपाल के ऊपर, कुछ रक्त की बूंदे यहाँ वहाँ छिलकाओ, तब जाकर एक्सट्रेसी आएगी। तो ये भीष्म पितामह की एक्सट्रेसी थी। तो यहां पर जब अर्जुन ने देखा कि भगवान दौड़ रहे हैं रथ के पहिए को लेते हुए, तो अर्जुन भागे पीछे। और अर्जुन भगवान को क्यों रोक रहे हैं कि आपकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। अरे जो प्रण आपने लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, तो भगवान भाग रहे हैं अर्जुन की सुरक्षा के लिए, अर्जुन भगवान को पकड़ रहे हैं भगवान की सुरक्षा के लिए। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। और भगवान इतने स्पीड में भाग रहे थे कि अर्जुन, यहां पर आप जो देख रहे हो कि अर्जुन ने जिस पोजीशन में भगवान को रोकने का प्रयास किया, रोक नहीं पा रहे थे अर्जुन। अर्जुन घसीटे जा रहे थे और भगवान को यह भी भान नहीं था कि अर्जुन भगवान को पकड़ लिए हैं और भगवान अर्जुन को घसीट रहे हैं। भगवान इतने एब्जॉर्ब्ड थे कि उनके सामने केवल भीष्म वही दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था उनको। तो जब अर्जुन ने देखा कि मैं जो इतना शक्तिशाली एक क्षत्रिय हूं, कुंती पुत्र महाबाहो, मैं रोक नहीं पा रहा कृष्ण को, ऐसी कैसी शक्ति इनके अंदर है कि मैं रोक नहीं पा रहा, उस समय अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपना दाहिना पैर रणभूमि में धसाया और इतनी जोर से अर्जुन ने अपना दाहिना पैर रणभूमि में धसाया कि पूरी रणभूमि में जैसे कि भूकंप आया। जहां जहां युद्ध हो रहा था, पूरी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां जहां युद्ध हो रहा था, सभी रुक गए। उन्हें लगा भूकंप आया है। और वो था क्या? अर्जुन ने अपना दाहिना पैर रणभूमि के अंदर धसा दिया। क्यों? ताकि कृष्ण को वो आगे ना जाने दे सके। और तब कृष्ण रुक गए और उन्होंने देखा कि मैं रुक कैसे गया, तब उन्हें समझ में आया कि अर्जुन उन्हें रोक रहे हैं। और अर्जुन रोते हुए फिर भगवान से कहते हैं कि मेरे लिए आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको यह लग रहा है कि मैं भीष्म पितामह उन्हें नहीं मार रहा प्रेम और स्नेह के कारण, अब आप लौटिए रथ पर और मुझे देखिए कि वो अर्जुन जिसने पूरे जीवन भर ये धनुर्विद्या सीखी, मेरा जो कौशल इस धनुर्विद्या का, उसका जो उसकी जो पराकाष्ठा है वो मैं आज दिखाऊंगा आपको। मतलब जो मेरा टैलेंट है युद्ध लड़ने का, वो पूरा टैलेंट मैं भीष्म पितामह के ऊपर उतारूंगा आज। और भीष्म पितामह इस दृश्य को देख रहे हैं, आप देख रहे हो भीष्म पितामह ने सब अपने हथियार छोड़ दिए और वो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं और उनके मुस्कान में एक सरकैज़म है, व्यंग है। और क्या व्यंग है? हार गए आप, मैंने आपका जो प्रण है वो तुड़वा दिया। परंतु भगवान को उसकी कोई परवाह नहीं और भगवान के चेहरे के ऊपर जो गंभीरता थी, जो तीव्रता थी, जो क्रोध था, जो रौद्र था, भगवान के चेहरे का एक्सप्रेशन ये था कि मैं हारा नहीं, मैं मेरे उस प्रण में जीता हूं। जो मैंने भगवत गीता में अर्जुन को दिया था, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मैं उसमें जीता हूं। और भगवान केवल उस रथ के पहिए को लेकर दौड़ नहीं रहे थे, भगवान भीष्म पितामह को बहुत कटु शब्द भी बोल रहे थे। भगवान ने कहा भीष्म पितामह को कि एक राजा जब वो पथभ्रष्ट होता है और वो अधर्म के पथ पर चलता है तो उस राजा को ठीक करने की जिम्मेदारी उसके मंत्री की होनी चाहिए, और भीष्म तुम वो मंत्री थे धृतराष्ट्र के लिए, तुमने वो नहीं किया तो आज ये लो मैं तुम्हें खत्म करूंगा तुम्हारे उस दुर्लक्ष व्यवहार के लिए। और भीष्म पितामह उन्होंने जैसे अपने दोनों हाथ पीछे कर दिए, अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, और भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए भगवान से कहते हैं, जब भगवान के शब्द सुने भीष्म पितामह ने तो भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यदि मैं गैर जिम्मेदार मंत्री रहा और मेरे गैर जिम्मेदार होने के वजह से आज आपका ये इतना सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है तो मुझे उसका कोई रंज नहीं, आइए आप खत्म कीजिए मुझे, आपके हाथों खत्म होऊंगा उससे ज्यादा सौभाग्य क्या मिलेगा मुझे। सो दिस पिक्चर इज अ वेरी इमोशनल पिक्चर, इसलिए अगली बार जब भी हम इस चित्र को देखें तो इसके अंदर जो ऐसी भावनाएं उमड़ उमड़ के आ रही हैं, भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों की, कि कौन किसके प्रेम में किससे जीत रहा है, इसमें कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पाया है, इस लीला में कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पाया है कि कौन किसके अगेंस्ट किसके प्रेम में जीता है। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने ये बताए कि मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध होगा मैं उठाऊंगा और मेरे भक्त की रक्षा करूंगा, तो भगवान से हमको क्या सीखना है कि उसी प्रकार से जो भी साधन हमारे पास अवेलेबल हो उसे हम इकट्ठा करें हमारी साधना की सुरक्षा करने के लिए। तो इसी संदर्भ में एक और उदाहरण, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी, ये भी जो प्रसिद्ध स्टोरी है अक्षय पात्र की, कि जब वो लोग अज्ञातवास में थे और ये अक्षय पात्र द्रौपदी को जो प्राप्त हुआ था, और इस अक्षय पात्र की खूबी क्या थी कि चाहे लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कोई आकर खाने के लिए आ जाए, इस अक्षय पात्र से उनको सर्विंग मिल जाएगा। कब तक? जब तक कि उस दिन द्रौपदी ने उसमें से खाया नहीं, द्रौपदी का हो गया उसके बाद उस दिन के लिए अक्षय पात्र इनवैलिड हो जाता है। तो हम स्टोरी जानते हैं कि दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजा और अकेले नहीं उनके 60,000 शिष्यों के साथ भेजा, और वो दुर्योधन जानता था कि इनका लंच टाइम कब होता है, ये भी जानता था कि द्रौपदी अपना लंच कब लेती है, पूरा टाइमिंग के साथ उसने दुर्वासा मुनि को भेजा, और वो भी कोई ऐसे सादे सुधे साधु को नहीं भेजा, दुर्वासा मुनि जो छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाते हैं उनको भेजा, और वो भी 60,000 शिष्यों के साथ। तो हम लोग सब लीला जानते हैं कि द्रौपदी ने खा लिया था। अब प्रश्न ये है कि द्रौपदी जैसी एक परफेक्ट बीवी, पत्नी, स्त्री, द्रौपदी ने वो पात्र साफ क्यों नहीं किया था? लीला में क्या है, भगवान ने क्या कहा द्रौपदी को, तुम्हारा पात्र, अक्षय पात्र लेकर आओ। तो भगवान जानते थे उसके अंदर वो शाक अटका हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि द्रौपदी जैसी एकदम सिस्टमैटिक स्त्री, उसने वो पात्र खाने के बाद साफ क्यों नहीं किया? कल्पना करो, अगर द्रौपदी वो पूरा अच्छी से मांझ के रख देती तो क्या होता? ये लीला होती नहीं? होती ना। भगवान को कुछ और करना पड़ता दुर्वासा मुनि के साथ। लेकिन ये इस पूरी लीला का पंचलाइन क्या है? पंचलाइन यही है कि द्रौपदी ने पात्र साफ नहीं किया था। वही तो पूरे पास्ट टाइम का टर्निंग पॉइंट है। मतलब भगवान जानते थे, इसलिए तो भगवान ने कहा कि वो पात्र लेकर आओ। नहीं तो और कोई अगर बोल होता, द्रौपदी अच्छी से मांझ के रख दिए और फिर कोई डुप्लीकेट पौंड्रक जैसा होता, पात्र लेकर आओ, तो उसका तो फ्लॉप शो होता ना, धोया हुआ पात्र आ गया। और पौंड्रक अगर खा भी लेता तो कुछ नहीं होता था, डकार भी नहीं आती थी किसी को। तो क्यों द्रौपदी ने वो पात्र साफ नहीं किया, ये है सबसे बड़ा प्रश्न इस लीला का, मिलियन डॉलर क्वेश्चन बोलते हैं ना जिसको। क्योंकि भगवान एक बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत सिखाना चाहते थे। द्रौपदी की गलती कि द्रौपदी ने वो पात्र साफ नहीं किया, कृष्णा यूजेस अवर मिस्टेक्स टू अपलिफ्ट अस, कि द्रौपदी की गलती से द्रौपदी को बचाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इस लीला का। जन्माष्टमी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कितने पात्र बिना मांजे रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ा पात्र, कितने सदियों से, कितनी योनियों में ये हृदय का जो पात्र है ये बिना मांजे रखा हुआ है। और कोशिश भी कर रहे हैं, अभी इस्कॉन से जुड़ने के बाद मांजने की कोशिश भी कर रहे हैं, परंतु कई बार करते क्या हैं कि वो और गंदा दिखता है, क्योंकि जो मांजने का साधन गलत कर रहे हैं हम लोग, तो और गंदा हो रहा है। परंतु अगर हम सिंसियर हैं तो जैसे भगवान ने द्रौपदी की उस तथाकथित गलती से द्रौपदी को बचाया और पांडवों को बचाया, जैसे मुचकुंद महाराज ने अपना सब कुछ दिया, देवताओं की सहायता करी, युद्ध उनके लिए लड़ा, जीते, असुरों का वध किया, सब कुछ किया। जब फाइनली वरदान, उनको बोला कि वरदान मांगो, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? सोना है मुझे, नींद चाहिए मुझे। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुचकुंद महाराज ने क्या वरदान मांगा है? सोने का वरदान, नींद। परंतु भगवान ने मुचकुंद महाराज की ये अपरेंट गलती को भी सेवा में इस्तेमाल किया और अपना साक्षात दर्शन, पर्सनल एसोसिएशन, वन टू वन, मतलब जो बोलते ना कि मंगलारती दर्शन हुआ है, मुचकुंद महाराज को उठते सो दर्शन हुआ ना भगवान का। हम लोग तो मंगल आरती के पहले बाथरूम में जाके नहाना पड़ता है, फिर बाद में अच्छे कपड़े पहन के तिलक लगा के फिर मंगल आरती के लिए। यहाँ पे मुचकुंद महाराज कोई मंजन नहीं किया, कुछ नहाए धोए नहीं, सीधा उठते ही, पहले तो उठते ही कत्लेआम। ऐसा कोई आपने किसी को देखा है मंगल आरती जाने से पहले किसी का कत्ल करके आया है? और भगवान की कृपा मिल रही है मंगल आरती में उसको। तो यहां पे मुचुकुंद महाराज सबसे पहले उठते ही कत्ल किया और उसके बाद में भगवान का डायरेक्ट दर्शन मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ हमारे अंदर खामियां होंगी। कृष्णा इज नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू बी परफेक्ट, ही वॉन्ट्स अस टू बी परफेक्टली सिंसियर। दिस इज द सीक्रेट। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट बट ट्राई टू बी परफेक्टली सिंसियर। लंदन में एक दिसंबर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर, ये इनको एक मतलब ये नए नए ज्वाइन किए थे तो इनको बहुत इच्छा थी कि मुझे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिसंबर का महीना है, मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ भगवद गीता। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये हकलाते थे। अब सोचो कि वहां पर वन टू वन करते हैं वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, सड़क पर जाकर आपको लोगों को रोक रोक के भगवद गीता दिखानी है, बुक्स दिखानी है, उनको बताना भी है उसके बारे में। तो इनकी प्रॉब्लम, और ये बहुत ज्यादा हकलाते थे। तो सबको लगा कि अरे भाई आप बैकअप कर लो मंदिर में रह के, हाँ किचन में सेवा कर लो, ये आपसे नहीं होगा। बोले मेरे को ट्राई तो करने दो। तो हुआ क्या कि रोज इनका स्कोर सबसे ऊपर होता था, एवरी डे ही वॉज अ टॉपर। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये नया नया डिवोटी एक तो, और इसको इतनी सीरियस प्रॉब्लम है हकलाने की, ये इतनी बुक्स कैसे बेच रहा है। तो फिर एक ने सोचा कि मैं जाके चेक करता हूं कि क्या नुस्खा इसका है। तो ये क्या करते थे, किसी को भी रोकते थे, अब इनको जो प्रॉब्लम है वो तो है, तो उसको बोलते थे बा 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 भाई साहब ये 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 भगवद गीता है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तो ये लाइन बोलने में उनको 3 मिनट लगती थी, मैं पढ़ के सुनाऊं। तो बोलता नहीं भैया दे दे। उससे जल्दी मैं पढ़ लूंगा पूरा। तो सोचो कि ये डिवोटी की एक जो इसके अवगुण बोल सकते हैं या खामी बोल सकते हैं, बट हाउ दैट टर्न इन टू अ ब्लेसिंग। टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जैसे वो एक मैं एक बार इंसिडेंट सुना रहा था ना कि एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, वो लोग अमेरिका में वैन पार्क किए, सब ब्रह्मचारी थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वन टू वन ऑलमोस्ट 3-4 घंटे। फिर जब वापस आए वैन गायब, उनकी वैन गायब। तो ये लोग 3-4 ब्रह्मचारी थे, अब क्या करें, वैन गायब। तो उसमें से एक ब्रह्मचारी ने कहा नहीं आप लोग रुको, मैं देख कर आता हूं। वो गए, 15-20 मिनट में वैन लेकर आ गए। तो ये लोग पूछे भाई तुम्हें पता था क्या, कैसे तुम लेकर आए, कहां से लेकर आए। बोले नहीं मैं उसी गैंग का मेंबर था। ब्रह्मचारी बनने से पहले मुझे पता है ये लोग कौन है और ये लोग चोरी करके कहां ले जाते हैं वैन को, तो मैं उसी का मेंबर था। तो कृष्ण की सेवा में अलग अलग तरीके से पूतना भगवान ने उसको भी यूज किया ना। कैसे यूज किया भगवान ने, कि पूतना जब उसने अपना विकराल शरीर लिया तो भगवान तब तक उसको नहीं खत्म किए जब तक पूतना चिल्लाते हुए वो बाहर गई नंद भवन से। नंद भवन, क्योंकि भगवान नंद भवन को खराब नहीं करना चाहते थे, बोले इधर सब खून खराबा नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे सब मेरा पास टाइम होने वाला आगे भी। तो उसको सब इंटैक्ट रखा, वृंदावन को भी इंटैक्ट रखा। पूतना को कहाँ गिराया, वृंदावन और मथुरा के बॉर्डर पे, जहां पे कंस के उपवन थे ना, उधर जाके गिर। तो सारा कंस का उपवन वो विध्वंस करवाया। तो पॉइंट क्या है कि भगवान हमारे एपरेंट खामियों को भी उनकी सेवा में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी जो अभी आ रही है, तो जन्माष्टमी भगवान अवतरित होते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, भगवान जो कहते हैं भगवद गीता में, चार चीजें करने के लिए हमारे साथ, टू रिमाइंड, टू रिडीम, टू रिक्लेम एंड टू रीयूनाइट। तो यहां पर हमें याद दिलाने के लिए कि वास्तविक घर कौन सा है, उसको कहते हैं याददाश्त वापस आना। तो धीरे धीरे हमको याद आने लगता है कि हाँ, हम एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और फिर वहां से मुक्ति हमारी प्रारंभ होती है, और फिर जिसको कहते हैं भगवान हमको रिक्लेम करते हैं, हम हैं उनके ही लेकिन अभी भगवान से अलग हो चुके हैं, तो रिक्लेम करना, घर वापसी, और फाइनली फिर भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन। तो वसुदेव जी हर समय मुझे जन्माष्टमी के उत्सव में मुझे जो बहुत प्रेरणा मिलती है वो वसुदेव देवकी से मिलती है। तो ये जो सिद्धांत है, स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट, आप वसुदेव में जी देखो कि कंस, देवकी और वसुदेव का रथ हांक रहा है, शादी का दिन है और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में सबसे पहले शब्द क्या थे? हे मूर्ख। अच्छा, आपको पता है कि पूरी जो शादी की वो डोली चल रही थी, इतने सारे लोग और सब लोग देख रहे हैं कि कंस रथ हांक रहा है, उसने सारथी को अलग कर दिया, तू नहीं मैं हांकूंगा आज मेरी बहना का रथ। तो बहुत बड़ा सीन था वो। और जब हे मूर्ख, आकाशवाणी ने क्या कहा, हे मूर्ख, तो केवल कंस पीछे मुड़ा। बाकी कोई पीछे नहीं मुड़ा। तो समझ जाना चाहिए कि जिसके लिए आकाशवाणी थी वही पीछे मुड़ा। और जैसे हम जानते हैं आकाशवाणी उसने सुनी, तलवार निकाल ली। तो देखो, एक तो स्त्री के ऊपर प्रहार करने के लिए तलवार निकाल ली उसने, और वो स्त्री कौन थी? उसकी बहन, और वो भी उसके शादी वाले दिन। तो ट्रिपल अपराध ये कंस कर रहा था। परंतु वसुदेव जी ने उस समय क्या, वसुदेव जी उनके पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और भी करते क्या कंस के सामने? तो उन्होंने जो कंस, वो जो डिस्कशन है वसुदेव जी का और कंस का, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया, स्ट्राइविंग फॉर द बेस्ट मतलब प्रोटेक्टिंग कृष्णा। अभी तक भगवान, अभी शादी हुई है, भगवान का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन आई हैव टू प्रोटेक्ट कृष्णा, बट आई कांट बिलीव कंसा। कंस वो ऐसा व्यक्ति है उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता, इसलिए प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो ये प्रश्न मेरे को एक बार पूछा था, कई ऐसे जो IIT इंजीनियरिंग के दिमाग होते हैं, तो उसने पूछा, प्रभु जी ये कंस को इतना दिमाग नहीं था, उसने एक ही जेल में वसुदेव और देवकी को क्यों बंद किया? अलग अलग जेल में बंद करता तो आठवा क्या, एक भी पुत्र नहीं होता था। तो सबसे पहले मैंने कहा वो IIT का नहीं था, वो या तुमसे कंसल्टेशन नहीं ली थी। लेकिन हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है, कंस को ये विचार आया था कि अलग अलग जेल में इनको बंद करें ना, विचार आया था कंस को, लेकिन कंस ने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंस का अहंकार इतना शक्तिशाली था, जब किसी का अहंकार इतना होता है ना तो बुद्धि काम नहीं करती। फिर तो कंस का अहंकार इतना था कि ये देवताओं ने आकाशवाणी मुझे सुनाई है, उन्होंने मुझे मूर्ख कहा है, उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि मेरे बहन का आठवां पुत्र मुझे मारेगा, मैं पुत्र को जन्म लेने दूंगा, मैं चाहता हूं कि वो जन्म ले और मैं इन देवताओं को दिखाऊंगा कि कौन किसको मारता है। ये उसका अहंकार था, तो अहंकार की वजह से उसने सेपरेट सेल्स में नहीं रखा था। तो स्थिति होती क्या, हमारी भी ऐसी स्थिति होती कि हमारे अंदर की देवकी अब भगवान को जन्म देने वाली है, लेकिन हमारे अंदर का जो अहंकार है उसे जब पता चलता है कि ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा सब कुछ छीनने वाला है, तब फिर वो तलवार निकालता है। तो हमारे अंदर वसुदेव जी होने चाहिए, वसुदेव जी जो कि हमारे अब नन्हे से कृष्ण को उनकी रक्षा करें। इसलिए जन्माष्टमी ये क्या है, एक तरफ है देवकी वसुदेव जिन्होंने भगवान की सेवा की सैक्रिफाइस के द्वारा, और एक तरफ है नंद और यशोदा, दे सर्व्ड कृष्णा बाय एंगेजिंग विथ हिम। तो हमारे लिए ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, परंतु ज्यादा देवकी और वसुदेव, कि हां वो बलिदान किसके लिए, मिशन के लिए, कि हम मिशन के लिए। वसुदेव और देवकी उन्होंने भगवान के मिशन के लिए, उनके अवतार के मिशन के लिए वो बलिदान दिया। तो हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए क्या बलिदान कर रहे हैं, ये जन्माष्टमी पे प्रश्न हमारा होना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ नंद और यशोदा, वो बाद का चैप्टर है कि उन्होंने कैसे भगवान को प्रसन्नता दी, वो जो मधुर लीलाएं उन्होंने की। इसलिए ये जो श्लोक है प्रसिद्ध, जिसके अंदर वसुदेव और देवकी इनका गुणगान हुआ है, मेरे पीछे दोहराइए, वसुदैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत गुरुं। आरती कुंज बिहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला नंद लाला, नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद हरि सुख कंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए गगन सम अंग कांति काली काली, राधिका चमक रही आली आली, लतन में ठाडे बनमाली बनमाली, कमरसी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्रसी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक मैं मोर मुकुट बिलसे बिलसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे, भजे मुर चंग मधुर मृदंग, ग्वालिन के संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहां ते प्रकट भई गंगा गंगा, कलुष कली हारिणी श्री गंगा श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा, बसी शिव शिष जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी जी। चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन बेनु बेनु, चाहूं दिसी गोपी ग्वाल धेनु धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद तेर सुन दीन विखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जायो राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे, जायो राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे। जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे, जयो गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपा जय जय प्रभुपा, गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गीताय गौर श्री बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ राशि मद भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी।